मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सबके विशेष अनुरोध के कारण आज भी मुझे रूहानी रिश्तों पर ही बात करनी पड़ रही है। मैंने इस्तेमाल किया शब्द का पड़ रही है। दरअसल कल मुझे जितने मेल मिले मैं आश्चर्यचकित था उनकी संख्या को देखकर कि उनमें से आधे से अधिक ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप ही सब मेरा दिशा निर्देश करते हैं, तो आप लोगों के इस अनुरोध को टालना मुझे ठीक नहीं लगा। हालांकि बहुत से ऐसे उसके डायमेंशंस हैं जिन पर बहुत विस्तार के साथ बातें की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगा था कि शायद व्यावहारिक स्तर की सभी बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मैंने इसे समाप्त कर दिया था। लेकिन आज फिर से मैं इस पर कुछ और नई बातें आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, जो रूहानी जो अनुभव है, बेसिकली यह एक अनुभव है। याद रखिए कि यह अनुभव किसी के प्रति भी हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं किसी के प्रति, तो इसका अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ही, या कोई जीवित प्राणी होगा उसके प्रति ही, वो मनुष्य ही होना चाहिए। नॉट एट ऑल। यह रूहानी रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है। आप यूं कह लीजिए कि जिसके प्रति भी हमारे मन में भावना का उद्रेक होने लगता है, या यूं कह लीजिए कि सिर्फ भावना की बात तो हम न कहें, भावनाओं के साथ साथ कहीं न कहीं भक्ति का, श्रद्धा का, प्रेम का संचार होने लगता है, तो मान करके चलिए कि ये जितनी भी बढ़ती चली जाएगी स्थिति, उतना ही वह जो हमारा संबंध है, हमारा जो रिश्ता है, रूमानियत में तब्दील होता चला जाएगा। मैंने कहा रूमानियत में तब्दील होता चला जाएगा। याद रखिए, रूमानियत और रूहानी अलग अलग है ना। रूमानियत कहीं ना कहीं आप एक तरीके से रागात्मक प्रेम को लेकर के चल सकते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जब आध्यात्मिकता अपने चरम पर पहुंच जाती है तो वो भी कहीं एक रागात्मकता का ही रूप ले लेती है, एक रूमानियत का रूप ले लेती है। लेकिन चलिए, यह एक बहस का बिंदु हो सकता है, हम उस पर नहीं जाते। कभी कभी मैं सोचता हूं, ताजमहल मैंने कई बार देखा है, लेकिन ताजमहल की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? अब आर्किटेक्ट लोग बताएंगे कि क्या खूबसूरती है उसके डिजाइन में, उसके बनाने में, बनावट में, लेकिन जो सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती है वो इस बात में मुझे दिखाई देती है कि उसे एक शासक ने, शाहजहां ने, अपनी पत्नी के प्रेम के स्मृति में खड़ा किया है, बनाया है। तो जैसे ही हम ताजमहल को देखते हैं तो बिल्डिंग गायब हो जाती है और हमारे सामने वो जो पूरा का पूरा जो भवन है वो एक प्रकार के प्रेम के स्मारक के रूप में तब्दील हो जाता है। और जैसे हमारे दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं, तुरंत वह संबंध, वह रिश्ता जो उस बिल्डिंग के साथ है, कहीं ना कहीं रूहानियत की यात्रा पर चल पड़ता है। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग फ्लोरेंस गए थे, मैं और मेरी पत्नी, फ्लोरेंस में जब हम पहुंचे तो एक गली से गुजर रहे थे, तो उसमें एक मकान के सामने हम लोग खड़े हुए और वो जो हमारे गाइड थे वो बता रहे थे कि ये वो मकान है जहां माइकल एंजेलो ने अपने बचपन का समय बिताया था। और फिर कुछ अपनी बातें तो वो जोड़ देते हैं कि ये वो जगह है जहां वो खेला करते थे, इस तरीके से वो बातें करने लगे। देखिए, मेरे लिए पहले वो जगह एक सामान्य सी जगह थी, ठीक है, एक घर है, उसके सामने एक थोड़ी सी खुली जगह है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि हाँ माइकल एंजेलो खेला करते थे, आप विश्वास कीजिए कि मैं तुरंत साष्टांग हो गया, बिल्कुल साष्टांग। हालांकि वहां धूल थी, कच्ची जमीन थी, लेकिन मैं साष्टांग हो गया और मैंने उस जमीन को प्रणाम किया। अब ये जो घटना घटित हुई, बेसिकली क्यों घटित हुई, वो कौन सी बात थी जिसने मुझे वहां साष्टांग होने के लिए विवश कर दिया? विवश भी नहीं कहना चाहिए, तो अपने आप ही हो गया। तो माइकल एंजेलो का जैसे ही प्रसंग आया, मेरे थॉट में, मेरे भावनाओं में कुछ इस तरह की उथल पुथल हुई होगी, उधेड़ बुन चली होगी और मुझे ऐसा लगा होगा कि नहीं, ये जो जगह है ये बहुत ही पवित्र जगह है, ये सामान्य जगह नहीं है, इसे प्रणाम करना चाहिए, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस जगह पर मैं खड़ा हूं। मुझे याद आ रहा है कि सन 1992-93 की बात होगी, जब हम लोग पोरबंदर गए थे और गांधी जी का जो भवन है और उसमें जब हम लोगों को ले जाया गया जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, उस कमरे में। तो मैं अभी आप सबसे बात कर रहा हूं और मैं रोमांचित हूं कि किस तरह की अनुभूति होने लगी कि अरे, इस कमरे में गांधी जी का जन्म हुआ था और वहां एक छोटी सी जगह भी बनी हुई है जहां बिस्तर जैसा एक छोटा सा होता है ना, वो लगा हुआ है, वहां उनकी तस्वीर भी लगी है। गांधी जी इस कमरे में जन्म लिए थे, इस कमरे में गांधी जी का जन्म हुआ था। अब आप देखिए कि तुरंत उस कमरे के साथ जो हम लोगों का रिश्ता था वह रूहानियत में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, ये जो रूहानी संबंध है, इसे आप बहुत विस्तार के साथ समझने की कोशिश कीजिए, अनुभव करने की कोशिश कीजिए। जब हम अपने पवित्र स्थलों पर जाते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, आप देखिए चर्च हो, तो हम थोड़े अलग तरह की अनुभूतियों के वशीभूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विचार और हमारी भावनाएं वहां पहुंचते ही बदल जाती हैं और कुछ भी नहीं है। जो रूहानी रिश्ता है वो बेसिकली हमारे अनुभव और हमारे विचारों में आई हुई एक तब्दीली ही है, अच्छी तब्दीली, एक पवित्र परिवर्तन। और यह परिवर्तन कुछ ऐसा लगता है कि मालूम पड़ता है कि आप बिल्कुल रूई के बादलों के बीच में उड़ रहे हों, फूलों की सुगंधों के बीच में आप तैर रहे हों, आप गंगा स्नान कर रहे हों। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीने से लथपथ हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप बिल्कुल ठंडे पानी से स्नान करके बाहर आते हैं, यानी कि गंगा में डुबकी लगा करके आप निकल रहे हैं। फूलों के बीच में आप घूम रहे हैं, सितारों के बीच में आप बैठे हुए हैं। इस तरह का जब अनुभव होने लगे किसी भी स्थान के प्रति, किसी भी घटना के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, तो आप मान करके चलिए कि आपके अंदर रूहानियत उतर रही है। तो दोस्तों, ये शारीरिक उत्तेजना नहीं है, ये मानसिक उत्तेजना भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, ये कोई चुंबकीय तत्व नहीं है, ये सीधा सीधा बहुत सरल और सहज अनुभव से जुड़ा हुआ तत्व है। तो अब इसी के साथ ही मित्रों, आज अपने इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।